والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابحات صبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. سورة نازعات کا ترجمہ مکمل کر چکے ہیں. خلاصہ تفسیر الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہے اور معارف و مسائل میں ہم پیج نمبر 664 کے اوپر ہیں. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے فرشتوں کی کچھ قسموں کی قسمیں کھائیں. والنازعات غرقا سے لے کر کے والسابحات صبحا تک, کہ یہ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو جان نکالنے پر مأمور ہوتے ہیں اور یہ جان نکالنے کے بعد پھر اس جان کو یعنی اس روح کو لے کر کے آسمان پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پھر اس کا انتظام کرتے ہیں, اور اس انتظام کرنے میں یہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد قیامت کے دن کا معاملہ تھا. تو اب یہاں سے ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جو 664 کے اوپر چلیں, ہاں یہ جو تیسرا پیراگراف ہے, دوسری صفت ہے ون ناشطات نشتا, کہ ناشطات نشتن سے مشتق ہے, اس کے معنی بندھن کھول دینے کے ہیں. جس طرح یہ بھی ہم ویسے تو پڑھ چکے تھے, تو اس میں میرے خیال میں آخری بات جو پچھلی کلاس میں ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جس وقت نزع کی کیفیت ہوتی ہے اور انسان کو عالم برزخ کی چیزیں دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں, یعنی ملک الموت نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, یا ان کی ٹیم جو اس کو لینے کے لیے آئی ہے وہ ٹیم نظر آنی شروع ہو جاتی ہے, تو اس وقت جو ہے نا اس کو اپنے قبر میں پیش آنے والے کیفیات کا بھی ادراک ہو جاتا ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے. تو جس کو آگے ثواب والا معاملہ نظر آتا ہے تو وہ تیار ہوتا ہے کہ ہاں مجھے لے جاؤ, اور اس کی روح نکالنا فرشتوں کے لیے آسان ہوتا ہے. تو آسانی سے جیسے بند کھولا جاتا ہے اور ہوا نکل جاتی ہے یا پانی نکل جاتا ہے, تو اس طریقے سے اس کی روح نکل جاتی ہے. اور جس کا معاملہ آگے خراب ہونے والا ہوتا ہے تو اب وہ اس کی روح جو ہے اس کے بدن کے اندر چھپنے کی کوشش کرتی ہے, تو اس وجہ سے پھر اس کو کھینچ کے باہر نکالنا پڑتا ہے, اور یہی جو ہے روحانی تکلیف ہوتی ہے جو کہ یعنی موت کے وقت کی سختی جس کو کہتے ہیں. اور یہ بات سنی تھی کہ جو جسمانی تکلیف ہوتی ہے, بخار کی وجہ سے ہو, بیماری کی وجہ سے ہو, یا حادثے کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے, تو اگر اس قسم کی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ایک الگ قسم کی تکلیف ہے, وہ جسمانی تکلیف ہے, روحانی تکلیف نہیں ہے. ٹھیک ہے, البتہ اس جسمانی تکلیف کا ایمان والے کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو جسمانی تکلیف اگر کبھی کسی ایمان والے کے ساتھ ہو مرنے کے وقت اگر ہو, تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, کیونکہ دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں ایمان والے کو پہنچتی ہیں وہ اس کے گناہوں کے بخشنے کا سبب بنتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تکلیف بھی جسمانی تکلیف ہے اور اس کے گناہوں کے دھلنے کا سبب بن رہی ہوتی ہے. کافر کے ساتھ یہ والی تکلیف جب ہوتی ہے تو کافر چونکہ ویسے بھی جب دنیا میں اس کو تکلیف پہلے ہوتی تھی تو وہ ویسے ہی ناشکری کے کلمات بولنا اور ہائے واویلا کرنا اور بچاؤ بچاؤ اور اس طرح کی باتیں کرنا وہ پہلے بھی شروع کر دیا کرتا تھا, اور اس وقت بھی جو اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت بھی وہ اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کو اگر یہ احساس ہو جائے جسمانی طور پر, ابھی اس کو برزخ کے احوال نظر نہیں آئے لیکن اس کو ایک احساس ہو جاتا ہے کہ جی یہ جو مجھے اب یہ زخم آ گیا ہے نا, تو اس زخم کی وجہ سے موت ہی واقع ہو جایا کرتی ہے, تو اب جو وہ بولنا شروع کرتا ہے نا کہ مجھے بچا لو میں نہیں مرنا چاہتا, مجھے بچا لو میں نہیں مرنا چاہتا, یہ جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ جسمانی تکلیف کی وجہ سے کہہ رہا ہوتا ہے. یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوتا کہ اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا, یہ اس نے جو ہے وہ قبر کے عذاب کو دیکھ لیا, اس لیے نہیں کہہ رہا ہوتا. ابھی اس کا تعلق اس دنیا کے معاملات کے ساتھ ہی ہے جب یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے, اور یہ یعنی اپنے اس کیفیت کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا. ٹھیک ہے, وہ اپنے علم کی بیسس پر یہ بات جانتا ہے کہ یہاں سے میں گیا تو پھر میں ہمیشہ کے لیے گیا, اب آگے میرے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ठीक है, यानी इस दुनिया के अंदर चूंकि उसने लज्जतें एंजॉय करी होती हैं, इस दुनिया को उसने जन्नत बना के रखा होता है, तो अब वो जन्नत को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन ये जो मामला होता है ना उसके साथ, ये इंटेलेक्चुअल मामला होता है, एक जहनी मामला होता है, जिस्मानी, जहनी मामला जिस्मानी मामला हुआ करता है। ठीक है, अभी बरजख के अहवाल नहीं खुले हैं उसके ऊपर, अभी तो सिर्फ उसको एक एहसास हो गया है कि ये जो मुझे जख्म पेश आ गया है, अब इससे मैं नहीं बचूंगा। ठीक है, तो वो शोर मचाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, जिस्मानी मामलात अलग होते हैं, रूहानी मामलात अलग होते हैं। यहां पर इस सूरत के अंदर जिन मामलात का जिक्र है, ये रूहानी मामलात का जिक्र है। अच्छा, तीसरी सिफत फरिश्तों की, वसाबिहाते सबहा। तो सब के लुगवी मानी तैरने के आते हैं, युसब्बिहून के क्या है, वो शम्सु तजरील मुस्तकर रहा जालिक तकदीरुल अजीजुल अलीम, और कमर कदरनाहु, क्या है सूरह यासीन, क्या है, क्लास के दौरान तो आती भी नहीं यार। तो खैर, वहां पर क्या है कि ये जो है वो सारे के सारे अपने जो मदार होते हैं उनके अंदर, युसब्बिहून, ये तैर रहे हैं अपने मदार के अंदर। ठीक है, सूरज भी और चांद भी, तो सब का मतलब होता है तैरना। तो मुराद इस जगह तेजी से चलना है, जैसे दरिया में कोई आड़ पहाड़ नहीं होता। ठीक है, समंदर के अंदर, ये दरिया से मुराद इनकी यहाँ पर समंदर है, कि समंदर के अंदर तो पहाड़ियां वगैरह नहीं होती है ना, जो डीप ओशन होता है वहां पर। तो तैरने वाला या कश्ती वगैरह में चलने वाला सीधा अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाता है। जब भी इवन आज के दौर के अंदर भी जो समंदर का, कुल्लुन फी फलक यस्बहून, हाँ, फलक से मुराद यहाँ पर वो होता है, ऑर्बिट होता है इनका, मदार इनका। तो जजाकल्ला, तो जिस तरह समंदर में जो है वो सीधा अपने मंजिल मकसूद की तरफ चले जाते हैं, जब भी समंदर के जो पैथ्स होते हैं, ट्रेड रूट्स वगैरह जो होते हैं, वो आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। हालांकि हवाई जहाज ने कितनी तरक्की कर ली, लेकिन फिर भी चूंकि वो सस्ता भी पड़ता है और जमीनी सफर के मुकाबले में समंदर का सफर बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो इसी तरीके से ये जो फरिश्ते जो कि तैर रहे होंगे ना, तो ये तैरने का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि ये स्ट्रेट जो है विदाउट एनी रुकावट अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, जो कि आसमान है। तो फरिश्तों की ये सिफत के तेज जाने वाले हैं, ये भी मलाइका मौत से मुतअल्लिक है, कि इंसान की रूह कब्ज करने के बाद उसको तेजी से आसमान की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात जो पिछली दफा भी हम एक यानी डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन एक और पॉइंट उससे रिलेटेड, कि हम समझते हैं ना कि जी इसराइल अलैहिस्सलाम अकेले हैं जो कि सबकी रूह निकालते हैं। ठीक है, तो सबकी रूह जो है वो अकेले निकालने का मतलब क्या होता है, कि है इनके पास पूरी एक टीम। ठीक है, पूरी एक टीम है, पता नहीं कितने हजार लाख करोड़ अरब, कितने पता नहीं इनके पास फरिश्ते होंगे। ठीक है, तो जो रूह निकालने का काम करते हैं वो तो ये टीम करती है, जैसे कि यहाँ पर एक टीम का जिक्र है, नाशितात, साबिहात, नाजियात, ये पूरी टीम है, जमा खसी गई है। लेकिन जैसा कि हम अपने दफ्तरों के अंदर भी जानते हैं कि काम कौन करता है, टीम करती है, लेकिन मेंशन किसको किया जाता है, टीम लीडर को मेंशन किया जाता है, राइट, मैनेजर को मेंशन किया जाता है, क्योंकि ये सिस्टम है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जी उनको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, उनका हक मारा जा रहा है। ठीक है, मतलब ये होता है कि भाई टीम के एक एक बंदे को हर वक्त अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा होता, या हर वक्त जो है वो उसका जिक्र नहीं होता, टीम लीडर का जिक्र होता है। तो इसराइल अलैहिस्सलाम जो है वो टीम के साथ काम करते हैं। अच्छा, क्या अल्लाह ताला इसराइल अलैहिस्सलाम को ये सलाहियतें दे नहीं सकते थे कि जी आप जो है वो अकेले सारा काम कर लें? ठीक है, सलाहियतें दे सकते थे अल्लाह ताला, अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है। लेकिन अल्लाह ताला ने इवन फरिश्तों के निजाम के जरिए से भी हमें लगता है कि समझाया है कि देखो काम जो है ना वो टीम वर्क में होता है। ठीक है, टीम के बगैर तनहा बंदा जो है ना वो काम नहीं कर सकता। तो देखें, जो बेहतरीन फरिश्ते, ये फरिश्ते ये कौन है, ये उलुल अजम फरिश्ते हैं। ठीक है, यानी फरिश्तों के सरदार हैं ये चार, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम एंड इजराइल अलैहिस्सलाम। ठीक है ना, सबसे बड़े चार फरिश्ते हैं ये। ठीक है, तो ये भी अकेला काम नहीं करते हैं, ये भी टीम के साथ काम करते हैं। इसी तरीके से इंसानों में सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, अंबिया अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो अंबिया अलैहिस्सलाम में से भी जो सबसे बेहतरीन नबी थे कौन थे, हमारे नबी अलैहिस्सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने चार मेन सपोर्टर्स, हेल्पर्स अता फरमाए। जिनको चार वजीर कहते हैं, चार खुलफाए राशिदीन, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु और अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है, तो सारी उम्मत का जो उलमाए अहले सुन्नत हैं यानी अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये चार जो थे ये नबी अलैहि सलाम के सबसे बड़े सपोर्टर्स हेल्पर्स थे, तो नबी अलैहि सलाम की ये टीम के लीडर्स थे। ठीक है, उसी तरीके से मूसा अलैहि सलाम का तो हम कुरान के अंदर पढ़ते हैं कि मूसा अलैहि सलाम को जब अल्लाह ताला ने कहा इذهب الى فرعون انه طغى, ठीक है, तो मूसा अलैहि सलाम ने क्या कहा था कि रब اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل وزيري وزيرا من اهلي, और मेरे लिए एक वजीर बना दिए मेरे अपने खानदान में से, हारून अखी, मेरा भाई हारून। तो उनको भी टीम की जरूरत पड़ी थी, एक अकेला, दो 11, राइट, तो दो मिल गए थे फिरौन के पास जाने के लिए। ठीक है, तो ये एक सिस्टम ये है कि अल्लाह ताला चाहे तो करवा सकते हैं अकेले से काम, कुछ लोगों ने अकेला काम भी किया अल्लाह की मर्जी से, लेकिन ये जो सपोर्टर्स टीम और सबॉर्डिनेट्स वाला जो सिस्टम है ना, ये इन जनरल हर जगह था। मूसा अलैहि सलाम के और भी सपोर्टर्स थे, यूशा बिन नून अलैहि सलाम, ठीक है, वो खिजर अलैहि सलाम की तलाश में जब निकले तो यूशा अलैहि सलाम को साथ लेकर के निकले। ठीक है, उसी तरीके से सूरह यासीन, अभी अभी जो सूरह यासीन की हम तिलावत कर रहे थे, तो सूरह यासीन के अंदर भी जो 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 अंबिया का जिक्र है, तो वहां पर तीन अंबिया उस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने भेजे थे, तीन अंबिया। ठीक है, तो टीम वर्क जो है वो जरूरी होता है, तो दीन का काम भी जो है वो हमेशा टीम वर्क में होता है। हम फारिग होकर नहीं बैठ सकते कि जी फलाने साहब तो है ना, काम कर तो रहे हैं, तो बस हम फारिग हैं, हम अपने काम करें और उनको अपना काम करने दें। भाई काम बेशक करने दें, उनके काम में आप रोड़े मत अटकाएं, उनके काम को खराब करने की कोशिश ना करें, लेकिन हेल्प करना, सपोर्ट करना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना। ठीक है, इससे हम ये नहीं कह सकते कि जी जो मूसा अलैहि सलाम को उनकी कौम ने कहा था है कि जी मूसा तुम जाओ और तुम्हारा खुदा जाए, हम तो इधर ही बैठे हैं, है ना, इन्ना हा हुना कायदून, हम तो इधर ही बैठे हैं, तुम जाओ और तुम्हारा तुम्हारा रब जाए। क्या मतलब तुम्हारा रब नहीं है क्या? किस किस्म की बातें करते थे, राइट, उनकी बातें ही ऐसी होती थी, तुम और तुम्हारा रब, यानी ये जो है ना रब से आजाद थे बनी इसराइल। तो हम बनी इसराइल वाली हरकतें ना करें कि जी ये जो अल्लाह वाले हैं, जो उलमा हैं, जो मशाइख हैं, तो ये तो चलो इतने नेक बंदे हैं ना, तो ये जाने इनका रब जाने, हमें तो जी जॉब करनी है, हमने तो जी ब्रो पैसे कमाने हैं और हमने तो जी अय्याशी करनी है। ठीक है, दीन की हिफाजत तो ये करेंगे, हमारे दीन की हिफाजत, हमारे औलाद की दीन की हिफाजत, ऐसे नहीं होता काम। ठीक है, ऐसे काम नहीं होता, हमें खुद जो है ना इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ता है, अपने लिए और अपनी औलाद के लिए तो हम खुद जिम्मेदार हैं, ये उलमा जिम्मेदार नहीं हमारी औलाद के, अल्लाह ने हमें जिम्मेदार बनाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा का हुक्म दे करके। लेकिन दीन की हिफाजत के लिए, दीन का मुआशरा बनाने के लिए, निजाम बनाने के लिए, इन उलमा और मशायख की हेल्प करना, इनके इदारों को प्रोमोट करना, इनकी हिफाजत करना, मदारिस, मसाजिद, खानकाहें, दीन के जो इस्टेब्लिश करने की जो मेहनतें हो रही हैं, इनके लिए अवामुन नास को मददगार बनना है। ऐसे नहीं अवामुन नास का ईमान महफूज आ जाएगा, उनकी औलाद का ईमान महफूज आ जाएगा। ठीक है, ईमान का क्या हाल है, अभी आज ही मुझे एक लड़के ने मैसेज किया कि उसके कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं अमरीका मुबारक से, अमरीका द ग्रेट से उसके कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं, तो आकर के क्या बोल रहे हैं उसको कि जी हम तो समझते हैं कि सारे दीन ठीक हैं, लड़के हैं, कजन हैं उस लड़के के, क्या कह रहे हैं, हम तो जी समझते हैं सारे दीन ठीक हैं और हम तो ह्यूमैनिटी पर यकीन रखते हैं, राइट, हम तो ह्यूमैनिटी पर यकीन रखते हैं, आपका क्या ख्याल है? ये बात करने वाले का ईमान बाकी बचा? जो जिस शख्स ने ये बात कही कि सारे दीन ठीक हैं, क्या वो मुसलमान है? ये वो लोग हैं कि जिनके माँ भी मुसलमान, बाप भी मुसलमान, और पाकिस्तान में पैदा हुए थे, और इनका दादा भी मुसलमान, दादी भी मुसलमान, सैयद घराने से भी ताल्लुक है, लेकिन ईमान नहीं बचा, ईमान नहीं बचा इन बच्चों का, राइट, तो ऐसे ईमान नहीं बचता, ईमान की कदर करनी पड़ती है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है अपनी ख्वाहिशात की, वरना ये अज्यूम ना करें कि जी हमारा नाम अगर मुसलमान है ना तो इसका मतलब है कि हम अंदर से भी मुसलमान ही हैं और हमने जन्नत में ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ईमान सबसे कीमती चीज है, इसकी कदर करनी पड़ती है। तो इसराइल अलैहिस्सलाम भी टीम के बगैर काम नहीं करते थे, तो हमारे उलमा और मशाइख कैसे टीम के बगैर काम करेंगे? ठीक है, और उसकी उनकी टीम कौन है? उनकी टीम हम लोग हैं, अवामुन नास हैं। चौथी सिफत फसाबिकात सबका, मुराद ये है कि फिर ये रूह जो फरिश्तों के कब्जे में है, इसको इसके अच्छे या बुरे ठिकाने पर पहुंचाने में सबकत और उजलत से काम लेते हैं। मोमिन की रूह को जन्नत की हवाओं और नेमतों की जगह में और काफिर की रूह को दोजख की हवाओं और अजाबों की जगह में पहुंचा देते हैं। क्या मतलब? असल दोजख और असल जन्नत में नहीं पहुंचाते, बल्कि दोजख के करीब जो जगह है सिज्जीन, जो कि आप पढ़ चुके हैं अभी कुछ दिनों पहले, और जन्नत के करीब जो जगह है इलीजीन, वहां पर पहुंचाते हैं। और ये जन्नत के अंदर नहीं होती, लेकिन ये जन्नत के एडजेसेंट होती है। पांचवी सिफत, फल मुदब्बिरात अमरा, के अमर इलाही की तदबीर और तनफीज करने वाले, यानी इन मलाइका मौत का आखिरी काम यह होगा कि जिस रूह को सवाब और राहत देने का हुक्म होगा उसके लिए राहत के सामान जमा कर देंगे, और जिसको अजाब और तकलीफ में डालने का हुक्म होगा उसके लिए उसका इंतजाम करेंगे कर देंगे। कब्र में सवाब व अजाब, फरमाते हैं कि जी मौत के वक्त फरिश्तों का आना और इंसान की रूह कब्ज करके आसमान की तरफ ले जाना, फिर इसके अच्छे या बुरे ठिकाने पर जल्दी से पहुंचा देना और वहां सवाब या अजाब, तकलीफ या राहत के इंतजाम कर देना। इन आयात मस्कूरा से साबित हो गया कि ये अजाब व सवाब कब्र यानी बरजख में होगा। बरजख क्या चीज होती है? बरजख जो है उस आलम को कहते हैं, उस वर्ल्ड को कहते हैं जो कि इस दुनिया और आखिरत के दरमियान है, इस दुनिया की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी के दरमियान है। तो ये बरजख है, इस बरजख का मतलब होता है आड़, एक पर्दा, एक हिजाब। ठीक है, तो ये हिजाब कैसा है कि हमें ये नजर नहीं आता बरजख के अंदर लोगों के साथ क्या मामला हो रहा है। ये मौजूदगी उनकी यहीं पर है, ये लोग यहीं मौजूद होते हैं, इसी दुनिया के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन इस दुनिया में अल्लाह ताला ने एक पैरेलल सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि जो कि रूहानियत से ताल्लुक रखता है, रूहानी दुनिया का है। ठीक है, तो इस वजह से ना वो हमें नजर नहीं आता। ओके, तो यही कहीं पर है और अल्लाह ताला ने उसको फिट किया हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो लेकिन हमारी आंखों से ओझल रखा हुआ है, तो इसको हम कबर भी कह देते हैं और इसी को हम बरजख भी कहते हैं। लेकिन कब्र से ज्यादा जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट वो बरजख का है, क्योंकि कब्र हम समझते हैं मिट्टी के अंदर जो गड़ा खोद करके बॉडी को दफन किया जाता है वो कब्र है। ठीक है, लेकिन ये कब्र हम जानते हैं कि हर एक की कब्र बनती ही नहीं है। जो जहाज के अंदर जल के मर गया उसकी कब्र नहीं बनेगी। ठीक है, जो समंदर में डूब कर मर गया उसकी कब्र नहीं बनेगी। जिसको राख बना करके जो है वो इधर उधर बिखेर दिया गया, किसी ने डिज्नी वर्ल्ड में जाकर के राख उसकी बिखेर दी, ऐसे भी करते हैं भाई। आपको आपने शायद सुना हो, पहले मैंने जिक्र किया था इस बात का कि पता लगा है कि जी डिज्नी वर्ल्ड के अंदर ना ये क्रीमेट करके जो राख बनती है ना बॉडी की, तो उसको डिज्नी वर्ल्ड में जाकर के मुख्तलिफ जगहों पर बिखेर देते हैं ताकि वहां पर जाके वो डिज्नी वर्ल्ड के कैरेक्टर्स और वहां की एंजॉयमेंट को कंटिन्यू करें मरने के बाद भी। ठीक है, तो उसकी तो कब्र नहीं बनी ऐसे शख्स की, तो फिर उसका क्या मामला होगा? तो कब्र बेशक ना बने, लेकिन बरजख का मामला तो चलता ही रहता है। तो हशर का अजाब व सवाब इसके बाद है, जो कि कयामत के नफ़े सानिया से शुरू होगा। अहादीस सहीहा में इसकी बड़ी तफसीलात मजकूर हैं। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला, आजिब रजी अल्लाह ताला की एक तवील हदीस मिश्कात में बहवाले मुसनद अहमद मजकूर है। ठीक है, तो कब्र का जो अजाब है तो इसके बाद में अहादीस सही है मौजूद हैं, तो इस वजह से इनका जो मुनकर होता है ना तो वो भी काफिर हो जाता है। कब्र के अजाब का मुनकर क्यों काफिर हो जाता है? क्योंकि कब्र के अजाब का तज़किरा सिर्फ जो जो खबर वाहिद हदीस में होती है। खबर वाहिद हदीस कौन होती है? कि जो के सिर्फ एक रावी से, एक सनद के जरिए से हम तक पहुंची हो, उसको खबर वाहिद कहते हैं। नहीं, एक सहाबी ने सुना और आगे बयान कर दिया। ठीक है, नहीं, ये सिर्फ खबर वाहिद के जरिए से नहीं कब्र के अजाब की चीजें पहुंची हैं, बल्कि ये कुरान के अंदर इसका तस्करा है। और कुरान के अंदर तस्करा जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से है। एक तरीका तो इस सूरत के अंदर जो ये सारा कुछ मौजूद है, वह मुदब्बिरात अमरा व साबिहात सबहा, ये तो समझ लें इनडायरेक्ट यानी मेंशन है कब्र के अजाब का। जो डायरेक्ट मेंशन है ना कब्र के अजाब का, वो वहां पर आता है जो कि जहां पर फिरौन के अजाब का तस्करा है। ठीक है, फिरौन के ऊपर जो अजाब हो रहा है उसका जो तस्करा है ना, वो तो यानी आखिरत के कायम होने से पहले के अजाब का तस्करा है। ठीक है, तो आखिरत से पहले जो जो जगह है उसी को तो कब्र कहते हैं, उसी को तो बरजख कहते हैं। ठीक है, जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर तो आखिरत शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कुरान में भी कब्र के अजाब का तस्करा है और अहादीस सही में तो बड़ी तफसीलात इसकी मौजूद हैं। तो ये एक बुनियादी अकीदों में से एक अकीदा हुआ कब्र के अजाब का इकरार करना। और आजकल तो आपको पता ही है कि क्या मामला है, कि जिसका जो मुंह उठाता है वो बोलना शुरू हो जाता है, और पता नहीं किस किस को अपना हम मुक्तदा बना देते हैं जो कि कब्र के अजाब के ही मुनकर होते हैं, और वो फिर हमारे पीर साहब बन जाता है जिसकी इंसान बात मानना शुरू कर दे हर मामला के अंदर, ठीक है ना। और अहादीस सैयद को रख के साइड पर और पीर साहब की बात मानना शुरू कर दे, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, ये जहन्नम की तरफ ले जाने वाले पीर होते हैं। नफ्स और रूह के मुताल्लिक हजरत काजी सनाउल्लाह की तहकीक मुफीद। अब ये जो तहकीक है ये आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, हमने सूरतुत तथफीफ की तफसीर में पेज नंबर 698 के ऊपर ये पढ़ी थी, उस वक्त भी एक्सप्लेन किया था। तो चूंकि है तो बहुत अहम कॉन्सेप्ट, इस वजह से दोबारा भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो पीछे का भी मुताला बाद में कर लीजिएगा। इसलिए कि ये कॉन्सेप्ट अगर पहली दफा आप सुन रहे हैं तो शायद फर्स्ट टाइम आपको इतनी आसानी से समझ में ना आए, मैं कोशिश करूंगा कि आसान बना करके उसको समझाएं। खैर, तो नफ्स और रूह के मुतालिक जो तहकीक है वो भी किसने करी है, काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने, जो कि दिल्ली के रहने वाले थे, और यानी हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को तो नाम सबने भी सुना होगा। तो ये उसी दौर जमाने के थे, ठीक है। यानी मुगलों का जो तकरीबन इन्हितात का जमाना शुरू हो चुका था, औरंगजेब आलमगीर का जमाना गुजर चुका था, और उनकी जो आगे वाली नस्लें थी जिनके अंदर के फिर बहुत सारी हरकतें शुरू हो गई थी, और अंग्रेज का जो है वो तसल्लुत बढ़ता चला जा रहा था, तो ये वो जमाना था, ठीक है, जब अंग्रेज गालिब आना शुरू हो गए थे। तो काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे, ठीक है, किताबी आलिम जिसको कहते हैं। लेकिन इनके एक शेख थे हजरत हजरत मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, नक्शबंदी सिलसिले के वो बुजुर्ग थे, और ऊपर जाकर उनका सिलसिला हजरत मुजद्दिद अल्फ सानी रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है 3-4 पुश्तों के बाद, ठीक है। तो हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, और ये हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के हम असर थे, यानी एक ही जमाने से ताल्लुक रखते थे, और उनके बहुत करीबी जो है वो साथी दोस्त यार इस तरह के थे, ठीक है। तो काजी सनाउल्लाह पानीपति उनके मुरीद थे। तो उन्होंने जो तफसीर लिखी ना, ये तफसीर बड़ी तफसीरों में से एक तफसीर है, और उन्होंने इस तफसीर का नाम अपने शेख के नाम पर रखा, तफसीर मजहरी, क्योंकि शेख का नाम था हजरत काजी सनाउल्लाह, काजी हजरत मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, तो अपनी तफसीर का नाम तफसीर मजहरी रखा इस वजह से उन्होंने। और चूंकि इनका ताल्लुक तस्किया नफ्स के साथ और रूहानियत के साथ बड़ा गहरा था, तो इस वजह से इनकी जो तफसीर है इसके अंदर रूहानियत की बहुत ज्यादा बातें मिलती हैं। रूहानियत से क्या मुराद, रूहानियत से मुराद वो जिसको हम रूहानियत कहते हैं वो मुराद नहीं, बल्कि रूहानियत से मुराद रूहानी तरक्की, तज़किया नफ्स, कल्ब के बारे में, रूह के बारे में बहुत सारी तफसीलात इनकी तफसीर के अंदर मिलती है। उड़ने उड़ाने और यानी घूमने घुमाने चलने चलाने ये वाली रूहानियत की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तफसीर मजहरी के हवाले से नफ्स और रूह की हकीकत पर कुछ कलाम सूरह हजर की आयत नंबर 29 के 29 के तहत गुजर चुका है। इसी सिलसिले की मजीद तहकीक और तौजीह बैहक़ी वक्त हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपति कदस सरहू ने इस जगह तहरीर फरमाई है, यानी इनको इनके इनके इंतहा दर्जे के इल्म की वजह से बैहकी वक्त का नाम दिया गया। बैहकी जो है रहमतुल्लाह अलैह वो बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान और बड़े फकीह गुजरे हैं, बिल्कुल अव्वलीन दौर के, तो इनको जो है वो अपने दौर का बैहकी करार दिया गया इनके इस इल्म की वजह से। तो उन्होंने जो तहरीर फरमाई है जिससे बहुत से इश्कालात हल हो जाते हैं। तो इश्कालात हैं क्या, इश्काल का मतलब होता है कि यानी सवालात जो जहन में उभरते हैं तालिब इल्म के, ठीक है ना, तालिब इल्म के जहन में जो सवाल उभरते हैं इनके लिए एतराजात का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता, एतराजात का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए कि इसके जहन में हासिल करना, ठीक है ना, बातों को समझना, तो इस वजह से एतराज का जो लफ्ज है ये अपने अंदर एक नेगेटिव कॉनोटेशन रखता है, नेगेटिव मीनिंग रखता है, ठीक है। तो इस वजह से इसके लिए इश्कालात का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई इनको एक मुश्किल पेश आ रही है, इश्काल पेश आ रहा है, तो अब ये अपने उस्ताद से पूछेंगे तो उस्ताद जवाब देंगे, इनका इश्काल दूर हो जाएगा, ठीक ठीक है, तो तालिब इल्म के जहन में इश्कालात पैदा होते हैं, ये हर तालिब इल्म के जहन में होते हैं, बल्कि जिसके जहन में नहीं होते वो बुरा तालिब इल्म होता है, जिसके जहन में होते हैं वो अच्छा तालिब इल्म होता है, क्योंकि इश्काल का पैदा होना इस बात की दलील होता है कि ये कुछ जहन इस्तेमाल कर रहा है, ये कुछ सोच रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, जिसके जहन में कोई इश्काल ही नहीं है तो मतलब ये शायद वो जो है वो माशाल्लाह कोई तवज्जो ही नहीं है उसकी अपने इल्म की तरफ, अगर सोचता तो शायद उसके जहन में भी इश्काल पैदा होते, लेकिन क्योंकि सोचता ही नहीं है, उसको फिक्र ही नहीं है अपने इल्म की, तो इस वजह से इश्काल भी पैदा नहीं होते। तो इश्काल पैदा होना अच्छी बात है, चाहिए ये कि उस्ताद से पूछ करके इस इश्काल को हल करने की कोशिश करें। तो इश्कालात हैं क्या इस टॉपिक के अंदर? इश्कालात ये हैं कि भाई रूह जो है वो इल्लीयीन में रहती है कि कब्र में रहती है, ठीक है, तो मुख्तलिफ चीजें हमें मिलती हैं कुरान में और हदीस में, तो फिर वो कहाँ रहती है, ठीक है, तो ये इश्काल है। अब इसका इस इश्काल का जवाब इन्होंने दिया तो ये है कि हदीस मस्कूर से ये वाजे होता है कि नफ्से इंसानी एक जिस्म लतीफ है जो उसके जिस्म कसीफ के अंदर समाया हुआ है। जिस्म लतीफ का मतलब बहुत बारीक, हल्का, इतना हल्का कि इसका हम कोई फिजिकल वेट कर ही नहीं सकते। फिजिकल जो हमारे पास गैजेट्स होते हैं, मेजरमेंट टूल्स होते हैं, उनसे इसका वेट ही नहीं हो सकता, इसको आप गेज ही नहीं कर सकते, ठीक है, ये इतना लतीफ है। जैसे कि कोई 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 फिजिकल, जैसे कोई सॉलिड हो, सॉलिड को तो आप वजन कर सकते हैं आसानी के साथ, राइट, गैसेस को, सॉरी जो लिक्विड्स होते हैं उनको भी चले वजन कर सकते हैं, जैसे कि यानी आप उनका वॉल्यूम निकाल सकते हैं या उनका वेट भी निकाल सकते हैं, जी इतने किलो अगर उसको आप किसी थैली में डाल लें उस लिक्विड को, तो उस थैली को आप वजन कर सकते हैं। गैसेस का वजन तो और भी मुश्किल से, यानी पुराने जमाने में तो गैसेस का वजन ही नहीं कर सकते थे, इसलिए कि गैसेस क्या थी, लतीफ थी, राइट, तो उनका वजन ही कर सकते थे। अब इतने इंस्ट्रूमेंट्स इंसान ने इजाद कर लिए हैं कि गैसेस का भी वजन हो सकता है, हालांकि वो कितनी लतीफ होती हैं, राइट, लेकिन ये जो रूह है ना, ये रूह गैसेस से भी ज्यादा लतीफ होती है, ठीक है, इसको आप इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं देख सकते, इंस्ट्रूमेंट से भी इसका वजन नहीं कर सकते, तो ये मुराद है जिसमें लतीफ, ठीक है, कि ये रूह जो है वो इतनी यानी हल्की चीज होती है। अच्छा, ये रहती किधर है? जिसमें कसीफ में, कसीफ मीन्स गाढ़ा, जिसका एक बाकायदा एक फिजिकल फॉर्म होती है, ठीक है, उसको कसीफ कहते हैं, गाढ़ा, जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना गाढ़ा, तो हमारा जो जो बॉडी, हमारी जो बॉडी है ना, जिस्म, ये जिस्म कसीफ है, ये गाढ़ी चीज है, ये सॉलिड चीज है, तो इसके अंदर ये रूह मौजूद होती है। ये रूह इस जिस्म के अंदर आती कब है? जब जो मर्द और औरत का जब मामला होता है बच्चे की पैदाइश के लिए, तो उसके 120 दिन के बाद अल्लाह ताला एक फरिश्ते को ये रूह दे करके आलमुल अरवाह से भेजते हैं। वो फरिश्ता आकर के माँ के पेट के अंदर इस रूह को फूंकता है नुतफे के अंदर, तो नुतफा जो है ना फिर उसके बाद मुदगा बनता है, मुदगा के बाद अलका बनता है, ठीक है, उसके बाद फिर उसके अंदर हड्डियां पैदा होना शुरू होती हैं, लेकिन ये प्रोसेस 120 दिन से शुरू होता है जब ये रूह आकर के फूंकी जाती है, अब उसके अंदर जान पड़ जाती है, उससे पहले वो बेजान था, ठीक है, रूह के आने से जान पड़ जाती है, तो ये उस वक्त जो है वो जिस्म के अंदर इंसान के दाखिल हो जाती है और फिर ये उसके अंदर ही रहती है, ठीक है, जिस्म कसीफ के अंदर ही रहती है, तो इसके अंदर ये समाई हुई है और वो इन्हीं मादी अनासिरे अरबा से बना है, ठीक है। अब ये जो जिस्म है ये किस चीज से बना है? ये मादी अनासिरे अरबा से बना है, जो कि चार होते हैं एलिमेंट्स ऑफ नेचर जिनको कहते हैं, आग, हवा, पानी एंड मिट्टी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इन्होंने लिखा है ना, तो इसमें एक थोड़ी सी कंफ्यूजन ये पैदा हो रही है कि ये जो अनासिर अरबा से जो चीज बनी है, ये जिस्म लतीफ इससे बना है कि जिस्म कसीफ इससे बना है, ठीक है, जिस्म कसीफ के बारे में तो कोई डाउट नहीं है कि वो तो वाकई इसी से बना है, ठीक है, इसी जिस्म यानी ये जो जिस्म कसीफ है हमारा, हमारे फिजिकल बॉडी, मटेरियल बॉडी, राइट, ये तो फोर एलिमेंट्स ऑफ नेचर से ही मिलकर के बना है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो जिसमें लतीफ है जो कि रूह हमारे इस जिसमें कसीफ के अंदर होती है, क्या वो भी फोर एलिमेंट्स ऑफ नेचर से मिलकर बनी है? ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि पार्शियली, पार्शियली, ठीक है, पार्शियली जो है वो इन फोर एलिमेंट्स ऑफ नेचर से मिलकर के बनी है, और पार्शियली जो है ना वो कुछ एक और चीज है जिसका कि हमें इल्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि रूह एक ऐसी चीज है के वमा उतीतु मिनल इल्मे इल्ला कलीला, हमारे पास इल्म है तो, लेकिन कलील है, बहुत कम इल्म है। ठीक है, तो ये ना, ये जो जिसमें लतीफ है ना, ये एक तरह की यानी मिक्स किस्म की चीज है। ठीक है, इसके अंदर अनासिर अरबा का भी कुछ अमल दखल मौजूद है और इसके अंदर इसके अलावा भी अमल दखल है किसी चीज का। अच्छा, फलासफा यानी फिलोसोफर्स एंड अतिबा, अतिबा मीनिंग जो जो यानी हकीम जिनको कहते हैं, तो इसी को रूह कहते हैं। ठीक है, इसी जिस्म लतीफ को रूह कहते हैं, मगर दर हकीकत रूह इंसानी, दर हकीकत यानी असल हकीकत क्या है कि जो रूह इंसानी होता है ना, ये एक जौहर मुजर्रद और लतीफ़ रब्बानी है। ठीक है, यानी जौहर मुजर्रद का मतलब जौहर मीन्स एटम, ठीक है ना, उर्दू में इसको जौहर कहते हैं, लेकिन ये किस चीज को पॉइंट कर रहा है, यानी एक ऐसा पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है ना, एटम की क्या डेफिनेशन है, पुराने जमाने में एटलीस्ट यही डेफिनेशन थी ना, कि जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, एटम, राइट। तो लोएस्ट पार्टिकल ऑफ या लोएस्ट पार्ट ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली या इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो उसको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं होती, अकेला रह सकता है, तो इसी को मुजर्रद कहते हैं। जैसे सर्फ पढ़ने वाले जानते हैं, सुलासी मुजर्रद, रुबाई मुजर्रद, ठीक है, जिनके ऊपर असल के अलावा कुछ ना हो। तो जौहर मुजर्रद का मतलब कि जिसके अंदर सिर्फ ये जौहर हो और जौहर के अलावा कुछ ना उसके ऊपर, यानी बॉडी ना हो उसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ रूह हो। ठीक है, तो जौहर मुजर्रद और लतीफा रब्बानी, लतीफा रब्बानी का मतलब कि रब ने जो एक बहुत ही हल्की चीज बनाई है, जो के अपने यानी दस्ते कुदरत से अल्लाह ताला ने आलम अरवाह के अंदर बनाई है। ठीक है ना, जो के जिसको जिसको अल्लाह ताला ने, अभी हमने कल ही पढ़ा था ना, बिला वास्ता, ठीक है ना, बगैर वास्ते के अपने हुक्म से बनाया है। नहीं, आपकी क्लास में कल नहीं पढ़ा था, सॉरी, दूसरी क्लास में कल पढ़ा था, जहां पर हम सूरह बनी इसराइल की ये वाली आयत की तफसीर कर रहे थे कि यस अलूनक आने रूह, कि ये आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते थे कि रूह क्या चीज है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाया कि इनसे कह दीजिए कि हाजा मिन अमरे रब्बी, कि ये मेरे रब का अमर है। अमर का मतलब क्या होता है, हुक्म, तो रब ने हुक्म फरमाया कुन, हो जा, तो ये हो गई। ठीक है ना, बिला वास्ता, ये बिल वास्ता नहीं हुई, यानी अल्लाह के हुक्म के बाद कोई ऐसा नहीं हुआ कि एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तदरीजन एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू हुआ और उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के आखिर में जाकर के ये रूह क्रिएट हो गई, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा मामला अल्लाह ताला ने किसके साथ फरमाया, जमीन आसमान है, हमारा जिस्म, यानी जिनको हम आलम खल्क कहते हैं। आलम खल्क भी अल्लाह के हुक्म से ही बना, ऐसा नहीं है कि आलम खल्क बगैर अल्लाह के हुक्म के बन गया, नहीं, अल्लाह के हुक्म से ही बना। ठीक है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से एक प्रोसेस शुरू हो गया तखलीक का। ठीक है, और वो प्रोसेस जब कंप्लीट हुआ तो आसमान जो है वो इस शक्ल में सामने आ गया जिस शक्ल में अभी है, जमीन इस शक्ल में सामने आ गई जिस शक्ल में है, राइट, और इस तरह से बाकी सारी चीजें जो जमीन और आसमान के दरमियान मौजूद हैं, सब कुछ जो है वो तदरीजन बन गया, लेकिन जो आलम अमर की चीजें हैं वो तदरीजन नहीं बनी, वो एट वंस बन गई, इमीडिएटली कुन फयकुन। तो रूह भी जो है ना वो उन्हीं में से एक है। ठीक है, तो यहां पर लतीफ़ रब्बानी से मुराद वो वाली रूह है जो कि कुन के जरिए से बिला वास्ता, बगैर किसी वास्ते के इमीडिएटली बन गई। ठीक है, तो ये कह रहे हैं दर हकीकत रूह इंसानी एक जौहर मुजर्रद और लतीफा रब्बानी है, जो इस तबई रूह मीनिंग जो हमारे जिस्म कसीफ के अंदर रूह रहती है, ठीक है, जिसको जिस्म लतीफ इन्होंने कहा, उसको कह रहे हैं तबई रूह, यानी नेचुरल रूह या बायोलॉजिकल बॉडी के साथ लगी हुई रूह। तो कह रहे हैं कि जो इस तबीई रूह यानी नफ्स के साथ एक खास ताल्लुक रखता है, ठीक है, और तबीई रूह यानी नफ्स की हयात खुद उस लतीफ़े रब्बानी पर मौकूफ है, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो रूह है ना, ये असल रूह नहीं है, बल्कि ये लतीफ़े मुजर्रद, जौहरे मुजर्रद यानी लतीफ़े रब्बानी, ये उसका साया है, उसका अक्स है जो कि हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है, और अक्स आपको पता है कि अपने असल के ताबे होता है। ठीक है ना, हमारा जो साया जमीन के ऊपर पड़ता है तो वो साया जो है वो खुद से तो हरकत नहीं कर सकता ना, जब हम हरकत करते हैं जैसे जैसे हरकत करते हैं वैसे वैसे हमारा साया हरकत करता है, राइट। अगर हम उछलें तो साया भी उछलेगा, अगर हम बैठ जाएं तो साया भी बैठ जाएगा, ठीक है। तो साया असल नहीं है, असल तो हम हैं, लेकिन साया हमारे ताबे है, जो हम करेंगे या जो हमारे साथ होगा वो साया के साथ भी होगा। बिल्कुल ऐसे ही जिसमें कसीफ के अंदर जो 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 रूह है ये असल रूह का साया है, ठीक है। मैं भी आपका ये कमेंट पढ़ता हूँ, शायद साहब जरा मैं एक लॉजिकल पॉइंट तक पहुंचा करके। तो कह रहे हैं कि जो इस तभी रूह यानी नफ्स के साथ एक खास ताल्लुक रखता है, और तभी रूह यानी नफ्स की हयात खुद इस लतीफे रब्बानी पर मौकूफ है, गोया उसको रूह रूह कह सकते हैं, यानी हमारी जो जिस्म की रूह होती है उसकी रूह जो कि लतीफा रब्बानी होता है, तो उसको रूह रूह कह सकते हैं कि जिस्म की जिंदगी नफ्स से है और नफ्स की जिंदगी उस रूह से वाबस्ता है, उससे मुराद जो ऊपर है वो रूह, ठीक है, इलियीन के अंदर। इस रूह मुजरद और लतीफा रब्बानिया का ताल्लुक इसी जिस्म लतीफ यानी नफ्स के साथ क्या और किस तरह का है, इसकी हकीकत का इल्म उनके पैदा करने वाले के सिवा किसी को नहीं है। यानी ये जो ऊपर वाली रूह और हमारे जिस्म वाली रूह, इनके दरमियान कम्युनिकेशन जो होती है, ठीक है, ये कैसे होती है भाई? हमारा जो साया है तो वो साया किसी वजह से होता है ना, क्या वजह होती है कि रोशनी पड़ती है एक तरफ से, तो वो रोशनी जो पड़ती है तो हमारे जो बॉडी होती है उस रोशनी को रोक देती है, तो इस वजह से साया जमीन के ऊपर पड़ता है। तो ये मैकेनिज्म है हमारे साया होने का, ठीक है। तो अब ये जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ऊपर वाली रूह का नीचे वाली रूह के साथ जो जो ताल्लुक है ना, ये किस बेस पर है, यानी ये कम्युनिकेशन किस मोड में होती है, राइट। वायर्ड कम्युनिकेशन है, वायरलेस कम्युनिकेशन है, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है, कौन सी कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे नाम ले दिए, जो लोग इनसे वाकिफ हैं वो समझ गए होंगे ये नाम क्यों ले दिए, क्योंकि भाई कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए ना बीच में, तो ये फरमा रहे हैं कि उस मीडियम का हमें नहीं पता, ठीक है, सिर्फ अल्लाह ताला को इसका पता है। और ये जिसमें लतीफ जिसका नाम नफ्स है, इसको हक ताला ने अपनी कुदरत से एक आईने की मिसाल बनाया है, एक आईने की तरह बनाया है, जो आफ्ताब के जो के यानी आईना गोया के आफ्ताब के बिलमुकाबिल रख दिया गया हो, तो आफ्ताब की रोशनी इसमें ऐसी आ जाती है कि ये खुद आफ्ताब की तरह रोशनी फैलाता है, ठीक है ना, क्योंकि आईना भी जो है ना फिर वो गोया के सूरज ही बन जाता है, क्योंकि वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो ये जो रूह है ये गोया के असल रूह ही की तरह से काम करना शुरू हो जाती है। नफ्स इंसानी अगर तालीम वही के मुताबिक रियाजत और मेहनत कर लेता है तो वो भी मुनव्वर हो जाता है, वरना वो जिस्म कसीफ के खराब असरात में मुलवस होता है, यही जिस्म लतीफ है, ठीक है। यानी अब ये जो जिसमें लतीफ ये जो रूह है जिसको नफ्स भी इन्होंने कहा, ठीक है, ये जो हमारे इस जिसमें कसीफ के अंदर यानी हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर जो होता है ना, तो इस फिजिकल बॉडी के असरात इसके ऊपर पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो फिजिकल बॉडी के असरात होते हैं ना, ये इसको खराब करने की कोशिश करते हैं, ओके। तो इस वजह से ना इस रूह की तस्किया करना पड़ता है, इसको पाक रखना पड़ता है, या अगर गंदा हो जाए तो उसको पाक करना पड़ता है, ठीक है ना। या तो आप इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में रखें जो कि पाक है, ठीक है, या अगर आप इसको ओरिजिनल फॉर्म में ना रख सके, बुरे असरात पड़ गए इसके ऊपर, तो जब पड़ गए तो फिर उनको धोना पड़ेगा, उनको दूर करना पड़ेगा, इसी को तज़किया नफ्स कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, एज यू मेंशन दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेंड्स एन एंजल एट 120 डेज ऑफ फीटस फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू ब्लो द रूह इन द फीटस, मे आई नो वेयर डज दिस इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम, रेफरेंस प्लीज, जज़ाकअल्लाह खैर। हम पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर रेफरेंस के साथ की हदीस मुबारक है, और बहुत मशहूर हदीस मुबारक है ये तो, ठीक है, इंशाल्लाह। अभी तो मेरे जहन में नहीं है, मतलब कोई हाफिज हदीस नहीं है, लेकिन मिल जाएगा, और आपको कुरानी में मिल जाएगा या वरना और भी हदीस की किताब इंशाल्लाह मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और इसके बाद फिर अच्छा, तो इस का जो है ना फिर वो यानी तज़किया करना पड़ जाता है, तो यही जिसमें लतीफ है जिसको अच्छा। अब ये एक बात कर रहे हैं कि मौत के वक्त क्या होता है, ठीक है, ये जो फरिश्ते आकर ले जाते हैं ना रूह को निकाल के लेके जाते हैं, तो क्या होता है एग्जैक्टली, फरमा रहे हैं कि यही जिसमें लतीफ है जिसको फरिश्ते ऊपर ले जाते हैं, यानी बॉडी में से निकाल के ऊपर लेके जाते हैं, और फिर एजाज के साथ नीचे लाते हैं। अच्छा, अब यहां पर एजाज के साथ किसकी, काफिर की रूह को नीचे लेके आते हैं, नहीं, है ना। देखिए यहाँ पर इन्होंने काफिर का तज़किरा नहीं किया, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जी माशाल्लाह काफिर को भी एजाज के साथ ऊपर लेके जाते हैं, एजाज के साथ नीचे लेके आते हैं, राइट, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका तज़किरा नहीं है काफिर का, यहाँ पर सिर्फ ईमान वाले का तज़किरा है। तो एजाज के साथ ऊपर लेके जाते हैं, यानी ऊपर लेके जाते हैं, और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई इसको मेरे बंदे को मिट्टी के अंदर लौटा दो। कुरान की आयत भी है इसके ऊपर कि क्या है कि मैंने वो खलकना क्या है तारतन उखरा वाला जो है, ठीक है, हम फिर इसको उसी में से उठाएंगे, किसी को अगर याद हो आयत, ठीक है। तो उसको फिर एजाज के साथ नीचे लेकर के आते हैं, यानी उसकी कब्र में जो उसका मुकाम होता है वहां पे लेकर के आते हैं, जबकि वो मुनव्वर हो चुका हो। वरना क्या होता है, अच्छा यहाँ काफिर का तस्कर सॉरी एक्चुअली मौजूद है, कि वरना क्या होता है, आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खुलते हैं, और अल्लाह ताला फरमा देते हैं कि इसको पटख दो, ठीक है, मैं नहीं देखना चाहता इसको, मैं नहीं इसे, तो ऊपर ही से नीचे पटख दिया जाता है। पटख देने का मतलब ये नहीं है कि जी अब ऊपर से फरिश्ते उसको छोड़ देते हैं, वो ग्रेविटी ग्रेविटी के साथ नीचे आता है, नहीं, फरिश्ते उसको जोर जबरदस्ती के साथ ला करके फिर इस बॉडी के अंदर उसको पटख करके एंटर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसके साथ वो मामला शुरू हो जाते हैं सारे के सारे सवाल जवाब वाले, जिसका वो जवाब नहीं दे पाता है, फिर उसके ऊपर जो है वो जहन्नुम के खिड़कियां खोल दी जाती हैं और अजाब शुरू हो जाता है। अच्छा, यही जिसमें लतीफ है, जिसके बारे में हदीसे मस्कूर में है कि हमने उसको जमीन की मिट्टी से पैदा किया, फिर इसमें हम लौटाएंगे, फिर उसी से दोबारा पैदा करेंगे, यही जिसमें लतीफ आमाले सालिहा से मुनव्वर और खुशबूदार बन जाता है, ठीक है। तो यही जिसमें लतीफ, यानी ये जो हमारे अंदर जो 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 रूह मौजूद है, तो आमाले सालेहा करने से ये मुनव्वर होता है और खुशबूदार बन जाता है, यानी रूहानी खुशबू एक उसके अंदर आ जाती है और कुफ्र और शिर्क से बदबूदार हो जाता है। इसी का जिक्र उस मशहूर हदीस मुबारका के अंदर, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके कल्ब के ऊपर एक स्याह धब्बा दाग पड़ जाता है, ठीक है, अगर तौबा कर ले तो दाग मिट जाता है, लेकिन ना करे और एक और गुनाह कर ले तो फिर दूसरा दाग पड़ जाता है। तो ये दाग किसके ऊपर पड़ रहा है, इस रूह के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, कल्ब से मुराद रूह है, ठीक है, और वो कौन सी रूह है, वो ये वाली रूह है जो कि अंदर मौजूद है जिस्म के, ठीक है। बाकी रूह है मुजर्रद, तो इसका ताल्लुक जिस्म कसीफ के साथ बवास्ताए जिस्म लतीफ यानी नफ्स के होता है, इस पर मौत तारी नहीं होती, यानी वो जो रूह है मुजर्रद है जो कि इल्लीजीन के अंदर है, ईमान वालों की, सिजीन के अंदर है काफिरों की, तो उस रूह है मुजर्रद का जो ताल्लुक है ना इस रूह यानी इस जिस्म लतीफ के साथ, ये वाया जिस्म कसीफ है, ठीक है, यानी ये रूह जो है ये हमारे जिस्म के अंदर है। एक्सटर्नल चीजों का ताल्लुक इस रूह के साथ कैसे होगा, हमारे इस जिस्म के थ्रू होगा, ठीक है, बिकॉज हमारा जिस्म इसके गिर्द है, इसके गिर्द यानी एक पैकेज हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये फरमाना है कि इसका ताल्लुक जिस्म कसीफ के साथ बवास्ता है जिस्म लतीफ यानी एक्चुअली नहीं सॉरी इट्स अदर वे राउंड, ये जो पैकेज वाला कॉन्सेप्ट है ना इसको आप उलट कर लें, तो ये यानी रूह है मुजर्रद जो होता है उसका ताल्लुक अल्लाह ताला ने इस यानी जिस्म लतीफ के साथ किया, और ये जिस्म लतीफ से होता हुआ इसका ताल्लुक हमारे जिस्म कसीफ के साथ यानी हमारे फिजिकल बॉडी के साथ होता है, ठीक है। तो वाया जिस्म लतीफ ताल्लुक होता है, वाया जिस्म कसीफ नहीं, वाया जिस्म लतीफ जिस्म कसीफ के साथ ताल्लुक होता है। अच्छा, उस रूह पर मौत तारी नहीं होती, यानी जो कि आलम जो कि इल्लीजीन सिजीन के अंदर रूह है, सिजीन के अंदर जो रूह है ना उस पर कोई मौत शौत नहीं होती, ठीक है। तो मौत किस पर तारी होती है, मौत जो है वो इस जिस्म के ऊपर तारी होती है जब उसके अंदर से इस जिस्म लतीफ को फरिश्ते निकाल लेते हैं, तो इसका निकलना ही मौत कहलाता है। कब्र का अजाब और सवाब भी इसी जिस्म लतीफ यानी नफ्स से वाबस्ता है, क्योंकि इसको फरिश्ते ऊपर लेकर के गए और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इसको वापस बॉडी के अंदर लेकर के आ गए, ठीक है। तो अब जो है वो अजाब और सवाब का सिलसिला शुरू हो गया, और इस नफ्स का ताल्लुक कब्र से ही रहता है, ठीक है। अच्छा, रूह मुजर्रद ये इल्लीयीन में होती है, अच्छा इसकी वजह से मैं कह रहा था कि यहाँ पे उन्होंने सिजीन का तस्करा नहीं किया, क्योंकि इल्लीयीन के अंदर जो है ना वो काफिरों और फाजिरों की रूह नहीं रहती, तो उसके लिए सिजीन का तस्करा करना था, लेकिन इन्होंने यहाँ नहीं किया, जो भी हिकमत थी इसके अंदर। तो खैर, रूह मुजर्रद जो होती है उसका वो इल्लीयीन में होती है, और रूह मुजर्रद उसके सवाब व अजाब से बिलवास्ता मुतासर होती है, ठीक है, जो नीचे सब अजाब सवाब हो रहे हैं ना उसका इफेक्ट जो है वो ऊपर भी पहुंच रहा होता है, इस तरह रूह का कब्र में होना बमाने नफ्स के सही है, ठीक है, यानी जो नफ्स वाली रूह होती है वो कब्र में ही होती है, तो ये कह देना कि जी रूह तो कब्र में होती है तो ये भी बात ठीक है इस तरीके से, और इसका आलम अरवाह या इलीजीन में रहना बमाने रूह मुजर्रद सही है, तो इससे इन रिवायात मुख्तलिफा की तदबीक भी हो जाती है, ठीक है, वल्लाहु आलम। ठीक है, तो ये सारी तहकीक उन्होंने क्यों करी, इसलिए करी क्योंकि अहादीस और कुरान के दरमियान जाहिरी इख्तिलाफ नजर आता है, कोई हदीस कहती है कि कब्र के अंदर होती है ये रूह, कोई हदीस कहती है कि इलियीन के अंदर होती है, कुरान की कोई आयत कहती है इलियीन में होती है, और कहीं से पता लगता है कि कब्र कब्र के अंदर अजाब हो रहा है, जैसे फिरौन को अजाब हो रहा है, ठीक है, तो ये इख्तिलाफ हो गया, अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, उलमा को अल्लाह ताला ने क्या काम लगाया है इस अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन को एक्सप्लेन करें, क्योंकि देर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन इन रियालिटी, ठीक है, लेकिन आवाम को समझ में नहीं आता तो वो एक्सप्लेन करते हैं, तो ये सारी एक्सप्लेनेशन इसी वजह से थी ताकि रिवायात मुख्तलिफा की तत्बीक हो जाए, कोरिलेशन हो जाए इनकी, ठीक है, ज्वाइनिंग हो जाए इन सबकी, ठीक है, तो अब ये बस आपका मैं पढ़ करके अगर जवाब देना हुआ तो वो अभी दे करके क्लास खत्म कर देते हैं, टाइम ऑल हो चुका है। लतीफ़ रब्बानी रूह रूह लीन या सिजीन में है, मुराकबे में और मरने के बाद ये दोनों आपस में मिल जाती हैं क्या, जिसमें लतीफ नफ्स को कहते हैं क्या, हाँ जिसमें लतीफ जो है ना, ये जो नफ्स है ना, ये नफ्स का कॉन्सेप्ट आपको मैं पहले भी बताता रहा हूं कि नफ्स का लफ्ज जो है वो दो मानों में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, एक माना यह है कि ये जो टोटल नफ्स इंसानी है, ये जो हमारा टोटल रूहानी वजूद है ना जो कि हमारे इस जिस्म के अंदर मौजूद है, ठीक है, इसको भी नफ्स कहा जाता है, जैसे कि या ये तो हन नफ्सुल मुतमईना, कि पुकारा जाएगा कि ए नफ्से मुतमईना इरजई इला रब्बिकि राजियतन मरदिया, ठीक है, अपने रब की तरफ जाओ राजी हालत में, इस हालत में कि वो भी तुझसे राजी है तू भी उससे राजी है, ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे हमारे जो वजूद है उसको बुलाया जा रहा है, ठीक है, ओवरऑल वजूद से मुराद कि जो हमारी ओवरऑल रूह है, ठीक है, जो कि हमारे जिस्म के अंदर पूरी की पूरी मौजूद है, जिसको कि हम कहते हैं ना कि जी हम असल में तो रूह है, जिस्म तो जो इस दुनिया की चीज है जो इस दुनिया में ही रह जाएगी, असल में तो हमारी रूह है, ठीक है, तो मुराद इससे वो रूहानी स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, जब हम नफ्स का लफ्ज इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब हम नफ्स का लफ्ज तज़किया नफ्स के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं ना, तो वहां पर जो है वो मुराद होती है कि ये हमारे वजूद का एक पोर्शन है, एक हिस्सा है हमारे वजूद का, ठीक है, जो कि हमारा अंदरूनी दुश्मन है, जो कि ख्वाहिशात की वजह की पैरवी करना चाहता है, ख्वाहिशात पूरी करना चाहता है, जिद्दी है और बच्चों की तरह से जिद करता है, तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होता है वहाँ। अच्छा, जो आपने सवाल किया था तो मेरे ख्याल में सवाल का जवाब तो हो चुका है ना कि जी मिलती मिलती नहीं है ये, ठीक है, ये आलम बरजख में भी ये अलग अलग ही रहती है, रूह मुजरद ऊपर रहती है, ऊपर से मुराद इलीजीन या सिजीन में, और जो ये जो जिसमें लतीफ है, ठीक है, जिसको के नफ्स कहा गया यहाँ पर, वो कब्र में यानी बरजख में रहता है, ठीक है, तो ये अभी भी अलग अलग रहती है, ये मिलती कब है, ये मिलेंगी जन्नत या जहन्नुम में दाखिल होने के वक्त, ठीक है, ये वहां पर जो बंदा बनेगा ना वो बंदा जो है ना फिर वो टोटल होगा, ठीक है, अब उसको या तो जन्नत में भेज दिया जाएगा, तो वो जो जन्नत में जाएगा उस वक्त उसकी ये रूह मुजर्रद वो होगी, और उसको एक नया जिस्म अता किया जाएगा, एक नया जिस्म कसीफ अता किया जाएगा जो कि जन्नत को फुली एंजॉय कर सके, ठीक है, तो वो जिसमें कसीफ, ये वाला जिसमें कसीफ नहीं होगा जो कि हम इस दुनिया के अंदर लेके फिर रहे हैं, ठीक है ना, वो एक अलग जिसमें कसीफ होगा, और उस जिसमें कसीफ के अंदर जाहिरी रिवायात से ये समझ में आता है कि उस जिसमें कसीफ के अंदर रूहे मुजर्रद होगी, ठीक है, रूहे मुजर्रद होगी, ये रूहे मुजर्रद और वो जिसमें कसीफ, यानी वो रूहे मुजर्रद और वो जिसमें कसीफ, वो ऐसी होगी, यानी ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि इसकी जो जिस्मानी सलाहियतें हैं वो भी बहुत ज्यादा बड़ी होंगी होगा, और वो सही मानों में जो है वो, यानी माशाल्लाह पता नहीं कितनी रूहें मिलेंगी आपको वहां पर, राइट, कितनी हूरें मिलेंगी हैं, तो भाई उन हूरों का ख्याल भी तो रखना होगा ना, तो अगर इस दुनिया की जिसमें कसीफ के साथ उधर पहुंच गए तो हूरों के साथ तो फिर कुछ भी नहीं कर सकेंगे, राइट, तो फिर वो अलग ही किस्म का जिसमें कसीफ होगा, और रूहानी उसके अंदर कैसी सलाहियत होगी उसके बारे में, जिस्मानी के बारे में तो आपको बता दिया आपके तफरी तबाह की खातिर, राइट, रूहानी सलाहियत के बारे में अगर आप बताएं कि कैसी उसकी रूहानी सलाहियत होगी वहां पर, उसकी इंतहा का कैसे पता लगता है कि उसकी रूहानी सलाहियत वहां पर अल्टीमेट होगी, कैसे पता लगता है उसका? जी बस ये आप अगर जवाब दे दें तो फिर हम आपको जान छोड़ देंगे। जन्नत में जो रूहे मुजर्रद और जिसमें कसीफ, जन्नती जिसमें कसीफ, ये जो कॉम्बिनेशन होगा इसकी जिस्मानी सलाहियतें भी बहुत बड़ी भी होंगी और रूहानी सलाहियतें भी बहुत बड़ी भी होंगी, राइट? तो रूहानी सलाहियत से आप क्या करेंगे उधर जो कि आप इस दुनिया में नहीं कर सकते? जिस्मानी सलाहियत जी, माशाल्लाह, अल्लाह का दीदार, राइट, दीदार खुदाबंदी के काबिल होगा, वो आप इस दुनिया में नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो जन्नत में कर सकते हैं, यानी जन्नत में आपकी रूहानी सलाहियतें इतनी बढ़ जाएंगी कि अल्लाह को देखने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है? उसी तरह जहन्नुम के अंदर भी दोनों चीजों को बढ़ा दिया जाएगा ताकि खूब यानी अच्छे से मार पड़ सके, ठीक है ना, जी भर के मार पड़ सके, क्योंकि ये दुनिया का जिस्म तो मार भी बर्दाश्त नहीं कर सकता जहन्नुम की। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम से बचाए और जन्नत में दाखिल फरमाए।